ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति कहते ही हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी सही पहचान क्या है और हमारे आसपास जितने भी हमारे अपने हैं या फिर जिनके साथ भी हमारा इंट्रैक्शन है उनकी भी सही पहचान होने लगती है। और इस सही पहचान के साथ अगर हम उस नए रिश्ते को देखते हैं या उसी रिश्ते को देखते हैं तो एक नई नज़र से देख पाते हैं। रिश्तों को नई नज़र से देखने की ये पूरी श्रृंखला चल रही है और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
सचमुच सिस्टर शिवानी, सही पहचान के साथ जो हम कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस की बात है उसके साथ अगर हम अपने रिश्तों को देखते हैं तो एक नई नज़र से देख पा रहे हैं और जो अभी तक छोटी छोटी बातें थीं जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी वो अब लगता है कि सॉल्व की जा सकती हैं और अगेन दैट रिलेशनशिप कैन कम टू दैट एस्पेक्ट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पेरेंट चाइल्ड जिससे कि हम बातें करते आ रहे हैं, अभी तक अगर हम देखें तो बच्चा वो था जो बच्चा था, अपने डिसीजंस लेने के बावजूद भी हम ये मानते रहे कि वो बच्चा है, उसे नहीं आ रहा समझ में, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन अब एक वक्त ऐसा आता है, रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, अब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं जहां मुड़कर मैं इंतज़ार कर रही हूं कि बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उम्र का वो पड़ाव जो वृद्धावस्था है जहां डर लगने लगता है, सारी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, बच्चे से कुछ कुछ उम्मीदें, बच्चा भी नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना है क्योंकि वो बच्चा नहीं रहा, वो एक एडल्ट अपनी जिम्मेदारियों के साथ है। आज के इस दौर में वहाँ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है।
आई थिंक बिकॉज अगेन एक्सपेक्टेशंस, दिस होल रिलेशनशिप, इनफैक्ट एनी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस जहाँ नहीं मीट होती हैं तो दर्द होने लगता है। कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल तब होता है या हेल्दी तब होता है जहाँ उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप करते जाइए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन तो हर्ट नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अस फील के हाउ कैन आई जस्ट कीप डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन जहाँ एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन जब नहीं मीट होगी तो दर्द तो होने वाला है। तो द मोस्ट सेल्फलेस रिलेशनशिप विच कैन बी इज ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते रहे एंड दे डू इट सो सेल्फलेसली विद सो मच लव। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये एक थॉट रह जाता होगा कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे लिए फिर रिटर्न में करेंगे, तो वो फिर सेल्फलेस नहीं हुआ, वो कंडीशनल हो गया कि अभी के फेज़ में हम इनका ध्यान रखेंगे और उस फेज़ में ये हमारा ध्यान रखेंगे। और आज कहीं ना कहीं क्योंकि सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है तो बच्चे अगर वो एस्पेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं तो हर्ट हो जाता है। और कभी ना कभी मुख से ये निकल ही जाता है या थॉट में ये आ ही जाता है कि मैंने इनके लिए
इतना किया, सारी जिंदगी लगा दी,
इन्होंने क्या किया। तो जैसे ही एक्चुअली ये थॉट में भी आता है तो हमने सारा कुछ जो किया था जैसे उस पर कहीं पानी फिर गया, क्योंकि आपने सारा कुछ जो किया था वो इस एक्सपेक्टेशन से तो नहीं किया था ना कि उसके रिटर्न में कुछ मिले, तो हर्ट होता है। अगर हम ट्रस्टी होकर, परमात्मा शिव बाबा हमें यही सिखाते हैं कि आत्माएं हैं, जो बच्चे हैं वो भी आपके घर जो आए हैं वो भी आत्माएं हैं, आपका रोल है कि आपको उनको संभालना है, नॉट एज जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी समझ के कि दे बिलोंग टू मी, लेकिन ट्रस्टी होकर कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये परमात्मा के बच्चे हैं, मेरा रोल है इनको संभालना, इनकी पालना करना, इनको बड़ा करके सेटल करना, उसके रिटर्न में ये मेरे लिए क्या करेंगे, दैट इज नॉट द थॉट। बिकॉज ट्रस्टी को कभी रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता। तो अपने परिवार को संभालते हुए भी अगर ये स्मृति रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ जो इनको संभाल रहा हूँ, तो अपना कर्म करते जाएं और इन रिटर्न नो, बिकॉज इट्स द आई एंजॉय द रिलेशनशिप बिकॉज आई एम गिविंग, जस्ट कीप गिविंग इन द रिलेशनशिप एंड डोंट वेट टू गेट समथिंग बैक, क्योंकि फिर अगर वो नहीं मिले तो कहीं ना कहीं दर्द तो ज़रूर होगा। तो गिव, क्योंकि देने में इट फ्लोज थ्रू यू, आप प्यार किसी को दे रहे हैं, इट फ्लोज थ्रू यू, सो जस्ट कीप गिविंग इनटू द रिलेशनशिप। जो आपने कहा कि ओल्ड एज में आप पहुंच जाते हैं तो फिर भी तो आप पेरेंट ही हैं और फिर भी वो बच्चे ही हैं, फिजिकल रूप से हो सकता हमें कोई सिक्योरिटी की या संभाल की ज़रूरत हो, लेकिन एक इंटरनल मेंटल या इमोशनल लेवल पे वी आर स्टिल द पेरेंट. आई विल स्टिल हैव टू रिमेंबर माई रोल ऑफ अ पेरेंट एंड द रोल ऑफ द पेरेंट इज टू गिव. In fact, the role of each soul is to give. You know, parent or child, इस role में भी अभी ना आके हम उस भाव में चलें कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का कर्म है देते जाना.
लेकिन शिवानी, practical sense में अगर हम देखें तो नहीं, आज उस मुकाम पर है हम कि parents कह रहे हैं old age में भी आकर कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते हैं अपने बच्चों से. लेकिन practically अगर हम देखें तो वो इतने अकेले भी हो जाते हैं. अगर उनका एंड भी देखें, उस तरफ भी अगर मुड़कर देखें, तो सचमुच में ओल्ड एज में जब आदमी पहुंचता है उसको ज़रूरतें होती हैं.
एब्सोल्युटली ज़रूरतें होती हैं एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड दैट एंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर वो नहीं निभाते हैं तो क्या,
तो क्या वो रिश्ते को, सपोज चलिए अब जो ओल्ड एज में है वो तो ऑलरेडी उस सफ़र से गुजर चुके हैं, लेकिन आने वाला कई पीढ़ियां अभी हैं ऐसी जो उस तक पहुंचेंगी, तो आज ही क्या मैं अपने बच्चे के साथ उस रिश्ते को इतना मजबूत कर सकता हूँ कि आगे चल के जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं मांग भी सकता हूँ और वो बच्चे को मैं इस तरह की परवरिश दूँ कि मेरी मांग पर या मेरी पुकार पर वो सुन सके. कहीं ना कहीं शायद हमने ही तो नहीं दूर किया उस बच्चे,
हमने नहीं शायद दूर किया है, लेकिन वर्तमान समय एक दौड़ ही दूसरा चल रहा है ना. देयर इज सो मच कंपटीशन एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अर्निंग दैट फैमिली हैज टेकन सेकंड प्रायोरिटी. आज की जो सेकंड लेवल जनरेशन है वो अपने बच्चों को भी तो कहीं ना कहीं घर छोड़कर चले जाते हैं ना. तो बच्चों का ध्यान भी तो कोई और रख रहा है, तो पेरेंट्स का ध्यान रखना ये तो कहीं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे फिट ही नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है कि और चाहिए, सक्सेस चाहिए, करियर चाहिए, तो यू कैन नेवर हैव एवरीथिंग. कहीं ना कहीं एक बैलेंस तो स्ट्राइक करना ही पड़ेगा कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है. एक समय होता था कि जब लोग, परिवार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते थे, हम अपनी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ त्याग देते सिर्फ अपने परिवार को इंटैक्ट रखने में. लेकिन आज कहीं ना कहीं परिवार हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे चला गया है. हमारा करियर, हमारा एम्बिशन, ये सब कुछ ने ऊपर प्रायोरिटी ले ली है.
यंग जनरेशन को भी अगर हम देखें तो जब वो नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स का तो कहीं गिल्ट, एक फैक्टर
गिल्ट विल ऑलवेज बी देयर. लेकिन अगेन वो अपने गिल्ट को जस्टिफिकेशन दे देंगे कि यू नो व्हाट डू आई डू, आई डोंट हैव टाइम. तो वो धन है उनके पास, तो वो धन है क्योंकि वो धन ही तो कमा रहे हैं. धन है, समय नहीं है, समय नहीं है, एनर्जी नहीं है. यू नो एनी रिलेशनशिप डिमांड्स एनर्जी, यू नीड टू गिव एनर्जी इन टू दैट रिलेशनशिप. लेकिन हम इतने ड्रेन्ड आउट हैं, हम इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो हम कहाँ एनर्जी दे पाएंगे. अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ आकर बैठते भी हैं समय बिताने के लिए, मन कहाँ है.
कंटिन्यूस हम फोन पे हैं, पेरेंट्स के पास नहीं है तो लैपटॉप पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं.
सो दैट इज व्हाट द एनर्जी इज नॉट देयर. इट्स नॉट दैट टाइम नहीं है, टाइम तो है. पेरेंट्स को टाइम नहीं चाहिए, यू कैन गिव 10 मिनट्स. सेम विद द चिल्ड्रन, जो आज मिडिल एज है, हम कहते हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है. टाइम इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी, लेकिन जब उनके साथ हम बैठे हैं तो हमारी मन की स्थिति कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड दैट विल हैपन अगर आप अपनी माइंड की स्टेबिलिटी को रखते हैं, अपने ऑफिस के थॉट्स को वहीं पर पैकअप करके रख सकते हैं. अगर आपने मेडिटेशन का आप अभ्यास करते हैं और सारा दिन में हमने देखा कि हर एक घंटे के बाद 1 मिनट वो अभ्यास करते हैं, तो माइंड क्या होगा, चार्ज्ड रहेगा. शाम को जब आप घर पहुंचते हैं अपने पेरेंट्स के पास, यू आर मेंटली फ्रेश, मेंटली एनर्जेटिक, मेंटली अवेलेबल, तो आप वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन जब आप घर पहुंचे एंड यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट, और उतने समय में आपको अपने वो छोटे बच्चों को भी देखना है, सो हाउ मच एनर्जी डू यू हैव लेफ्ट फॉर द पेरेंट्स. एक्चुअली रिलेशनशिप्स इज नथिंग बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाउ आई एम फीलिंग, you know, about myself inside. अगर मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, I'm exhausted, तो हम क्या दे पाएंगे किसी को, और किसी को कुछ चाहिए भी नहीं. It's just that come and exchange positive energy with me. But to do that, आई नीड टू बी फिल्ड विद दैट स्टॉक इनसाइड. तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाए कि एक्सपेक्टेशन है इसलिए करना है नहीं, लेकिन दे आर माई पेरेंट्स, दे आर सोल्स विद हुम आई हैव हैड यू नो अ वेरी लॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप and it doesn't get over there like that kyunki I cannot finish that account with a disturbance ki wo mere prati agar disturbed rahenge to kahin na kahin wo disturbance ki jo energy hai wo bhi mere tak pahunchegi aur mujhe wo stability nahi milegi because it's all a karmic connection so I need to take care ki hame har atma ko santusht rakhna hai. Shiv Baba ek bahut sundar baat hame sikhate ki jab swayam santusht rahenge, you are satisfied inside, to aur log bhi aapse santusht rahenge, and agar aur log aapse santusht rahenge to aap swayam bhi andar bahut santusht rahenge because you will get so many good wishes.
Actually, yeah, it's a vicious circle. Absolutely. Again, but a very good vicious circle.
And you get lot of good wishes and lot of blessings from everybody. Aur ye positive energy jo hame apne parents se aur charo taraf sabhi se milti hai, this can help me to remain stable and very peaceful.
Wonderful. I'm saying, lekin only thing, if we look at it, it's so sad, you know. Parents are those people जो कि जब मैं छोटा था मेरे लिए वो ज़िंदगी थे. अब जैसे हमने शुरू में भी बात की थी इस श्रृंखला में कि जब बच्चा छोटा है तो उनके उसके लिए वो भगवान है, यू नो, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के आसपास. और आज एक वक्त ये आ गया कि मैं सोच भी नहीं पा रहा उनके लिए, यू नो. सो अगेन कहीं ना कहीं मेरा अपना भी थॉट प्रोसेस में ये बदलाव करना कि वो रिश्ता जिससे मैं इतना सब कुछ था मेरे लिए, आज कुछ भी नहीं, इतना डिफरेंस.
एक्चुअली शायद आई डोंट नो, बट अगर शायद हम वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा नहीं होगा कि वो रिश्ता हमारे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये शायद हो नहीं सकता, क्योंकि वो कार्मिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कार्मिक अकाउंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई एक झटके में शायद फिनिश नहीं किया जा सकता. लेकिन कहीं पुल दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ये एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं अंदर, तो हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं. यू नो, इट्स लाइक इफ़ आई हैव ओनली 500 रुपीज़, देन प्रोबेबली यू नो आई कैन शेयर दैट विद ओनली 5 पीपल. आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट विद 10 पीपल. बट इट्स नॉट अबाउट मनी, बट इट्स अबाउट हाउ मच एनर्जी आई हैव हियर. मेरे पास घर पहुँचने के बाद शायद उतनी ही ताकत है कि मैं अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों का ध्यान रख सकूं. शायद वो पेरेंट्स उस पैरामीटर में ही नहीं फिट हो पा रहे कि उनका ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है. एंड इफ़ यू जस्ट रिवाइंड अ लिटिल बिट, वी विल सी कि एक टाइम था कि जब एक पूरा एरिया, एक पूरा गांव एक परिवार था, कि हर एक का दुख सुख हमारा दुख सुख था. कहाँ? वी वर फिल्ड इनसाइड. हम कलयुग के अंतिम समय पर पहुंच रहे हैं ना, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. तो अगर हम सिर्फ 50 या 100 साल पीछे भी जाते तो एक पूरा बिल्डिंग, एक पूरा कॉम्प्लेक्स, इट वाज लाइक फैमिली. देन वी केम डाउन टू जॉइंट फैमिली कि ठीक है, अब हमें बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी नहीं है औरों के लिए, बट वी विल जस्ट टेक केयर ऑफ आर फैमिली. लेकिन जितनी बैटरी और डिस्चार्ज होती जाएगी, और डिस्चार्ज होगी,
फैमिली होगी, और अब तो सिंगल पेरेंटिंग, यू नो, एक बच्चा एक माँ, एक बच्चा एक पिता. It's like amazing what
क्योंकि उतनी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, अब उसके पास उतनी ही पावर है कि वो उतने ही लोगों का ध्यान रख सके. और ये शायद कलयुग के अंतिम समय की जो निशानियाँ दी गई हैं उसमें ये लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा कि एक कुएं का पानी चार कुएं में पूरा आ जाएगा, लेकिन चार कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर पाएगा. यू नो, दैट इज़ द साइन दैट इज़ गिवन कि कौन सा वो समय है जिसको घोर कलयुग कहते हैं और परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होना चाहिए. तो एक कुएं का पानी चार कुएं को भरेगा. एक पेरेंट चार बच्चों का ध्यान रख सकेंगे, इवन विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज वो चार बच्चों का ध्यान रखेंगे. लेकिन जब उनका समय आएगा तो चार बच्चे मिलकर भी एक पेरेंट का ध्यान नहीं रख पाएंगे.
तो अगेन अभी भी मुझे लगता है कि parents still have lot to do, you know. यहाँ जहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि क्योंकि वो hurt हो जाते हैं, expectations इतनी थी और resentment आ जाती है, तो वो ऐसे अंदर अपने चले जाते हैं.
True.
But I think still they can give those positive vibes.
Absolutely. That is what is more important. Yeah. क्योंकि बच्चों के दृष्टिकोण से देखें तो definitely बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है कि हम उस इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करें कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. लेकिन अगर हम पेरेंट्स के दृष्टिकोण से देखें, देन एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन डू टू मेंटेन माय स्टेबिलिटी. हमें हम अपना पूरा प्रयास करें उनके साथ रहकर, उनके साथ चलने का, लेकिन साथ साथ एक्सपेक्टेशन नहीं करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होगी तो बहुत हर्ट होता है. अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, वो जितना करते हैं उतना बहुत अच्छा. अगर वो नहीं कर पाते हैं, आप फिर भी माता पिता हैं और आपका रोल है देते जाना देते जाना, और उनको वो प्यार देने में ही आपको वो सुख का अनुभव होगा. तो जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, एनी सिचुएशन, तो इट्स बिकम्स ईजियर टू सेल थ्रू दैट सिचुएशन एंड इट विल नॉट लुक वेरी बिग फॉर अस.
शिवानी, पूरे हमने जब रिश्तों को, खासकर पेरेंट चाइल्ड के हर पड़ाव पर देखते आ रहे हैं हम रिश्ते को, और पेरेंट और चाइल्ड का ही रिश्ता हर एज ग्रुप में बदलता जाता है और एक नए रूप में सामने आता है. लेकिन अगेन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्योर एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. सोल कॉन्शियसनेस के लेवल पे अगर हम देखें तो वही संस्कार वो बदला जा सकता है अगर हम बिलीफ सिस्टम को बदलते हैं. मेडिटेशन का एक प्रोसेस है. बहुत से हमारे लोगों के भी ये सवाल आते हैं कि हम करते हैं, मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बीच में थॉट्स कहीं और चले जाते हैं, विजन नहीं आता है. तो क्या हम आज थोड़ी देर मेडिटेशन का एक,
हम आत्माएं अपने उस निराकार परमात्मा के साथ अगर एक संबंध जोड़ लें, तो दैट इज वन रिलेशनशिप विच विल ऑलवेज जस्ट गिव. You know, why is there a conflict in relationships? क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए और मुझे आपसे वो मिलता नहीं है, और फिर मुझे हर्ट होता है. चाहे वो ओल्ड एज में है, चाहे वो बच्चों के लिए यंग एज में है, कोई भी एज में जब मुझे वो संबंध से नहीं मिलता है तो फिर मेरे अंदर वो खालीपन आने लगता है. जब हम परमात्मा से वो संबंध जोड़ते हैं, तब हमें एक अनुभव होता है कि गॉड, the source of all powers and the source of all values and the source of all these beautiful thoughts that we have been sharing, whether it's love, whether it's peace, whether it's purity, he is the source. So if the soul connects to him, you know, atma parmatma se wo sambandh jodti hai, to usse sirf milta hi jata hai, usse dena nahi hai. This is one relationship jahan hame sirf lena hi lena hai, lena hi lena hai. और मेडिटेशन में संबंध जोड़ने से हम अपने अंदर इतना भर लेते हैं कि उसके बाद हमें जब आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें सिर्फ देना ही देना है, यू नो, क्योंकि हमें भरना है और देना है. अभी क्या हो रहा है, हम भर नहीं रहे हैं, हम खाली हैं. तो हमें चाहिए, हमें आपसे प्यार चाहिए, हमें आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, फिर वो मिलती नहीं है, हर्ट होता है, खालीपन अंदर आता, दुखी हो जाते हैं. तो जब राजयोग में हमें ये अनुभव हो जाता कि मैं उस प्यार के सागर से संबंध जोड़ती हूँ, जो रिश्ता चाहिए उसके साथ निभा सकते हैं, उस परमात्मा को अपना बच्चा भी बना सकते हैं, और उससे संबंध जोड़कर सारे गुण सारी शक्तियाँ उससे लेते जाएं, और जब आत्माओं के संपर्क में आए तो सिर्फ देते जाएं, यू नो, देन यू डोंट नीड एनीथिंग, क्योंकि जो भरा हुआ है उसको फिर औरों से चाहिए नहीं. देन आर रिलेशनशिप्स विद ऑल द सोल्स अराउंड अस, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, या हम छोटे हैं या अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, बिकॉज ये सब तो कॉस्ट्यूम के एज फैक्टर है. आत्मा, उसकी तो कोई एज नहीं है, चाहे वो 2 साल का बच्चा थी या अब वो 60 साल का बुजुर्ग है, उसकी कोई एज नहीं है. रिलेशनशिप आत्मा का आत्मा से होता है. तो जब वो है तो अपने आप को शिव बाबा की शक्तियों से भरते जाइए, और जब आत्माएं आपके संपर्क में आए, चाहे वो छोटे चाहे वो बड़े, उनको सिर्फ प्यार देते जाइए. और वैसे भी जिसके पास है नहीं तो उससे मांगने का क्या फायदा. वो जो आपने कहा ना, बच्चों को गिल्टी लग रहा होगा, यस उनको गिल्टी लग रहा है, लेकिन उनके पास है नहीं देने के लिए. दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड और दे फील दे आर एग्जॉस्टेड. तो अगर वो ऑलरेडी खाली हुए हुए, वो कहाँ से देंगे, देना चाहें भी तो दे नहीं पाते, खुद ही प्यार मांग रहे हैं, देंगे कहाँ से. तो मे बी हमें ही देना है उनको, और उसमें भी एज फैक्टर अप्लाई नहीं करता है. आप छोटे होकर भी बड़ों को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड द सोल इज फिल्ड इनसाइड. तो ऑल द सोल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज जस्ट कनेक्ट टू हिम, ही इज रेडी टू गिव अनकंडीशनली, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जस्ट फॉर्म एनी रिलेशनशिप एंड ही विल फिल यू अप एंड देन गिव टू द वर्ल्ड.
जैसे कि कहते भी हैं कि प्रेम का सागर है, तो जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं.
अपने आप को भरते जाइए और आत्मा इतनी भरपूर हो जाएगी कि फिर उसको अन्य आत्माओं से कुछ नहीं चाहिए होगा. और वास्तव में कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास है, मुझे देना है. और जब वो मेरे थ्रू किसी को जाएगा तो वो मेरे से ही गुजर कर जाएगा,
तो मैं फिर भरती जाऊंगी उसको. एक्चुअली मुझसे कुछ जा ही नहीं रहा.
तो जब आपको मुझे प्यार देना है तो सबसे पहले वो प्यार किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा. और फिर वो आप तक जाएगा. आप रिटर्न में दे या ना दे, आई ऑलरेडी गॉट इट. यू नो वी से आई गेव यू लव बट यू डिडंट गिव मी लव इन रिटर्न, बट यू डोंट नीड लव इन रिटर्न. बिजनेस थोड़ी हो रहा था, इट वॉज अ रिलेशनशिप या इट वॉज अ बिजनेस डीलिंग. वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. हम हर जगह डील करते हैं. मैंने रिस्पेक्ट दी बच्चों को, बच्चों ने रिटर्न में नहीं दी. मैंने उनसे प्यार से बात की, उन्होंने रिटर्न में प्यार से बात नहीं की. सो लेट इट बी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. और उसके लिए रोज सवेरे उठकर पहले तो 10-15 मिनट अपने लिए समय निकाल कर उससे संबंध जोड़ें, वो शक्तियाँ अपने अंदर भरें और फिर सारा दिन उस संबंध को निभाते रहें. तो हम कुछ क्षणों के लिए फिर से एक बार वो अभ्यास करते, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन फैकल्टीज काम करेंगे. मन थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि उसकी पिक्चर, उसका इमेज क्रिएट करेगी. और जैसे जैसे हम उसको अनुभव करते जाएंगे तो वो हमारा संस्कार बनता जाएगा. हम कुछ थॉट्स अभी लेते हैं और हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम थॉट और इंटेलेक्ट, माइंड और इंटेलेक्ट कट्ठे कट्ठे चलेगा, कि मन जो संकल्प करे, बुद्धि उसका चित्र तुरंत निर्माण करते जाए. सारे संबंधों को कुछ क्षणों के लिए बुद्धि से किनारा करके उस सर्वश्रेष्ठ संबंध की ओर ध्यान करते हैं. आज दिन तक हम उसे पुकारते आए कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम सखा बंधु, तुम सब कुछ मेरे. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उस संबंध को भूल गए थे. उस संबंध की ओर फिर अपनी बुद्धि को लेकर चलते जो सबसे पवित्र, सबसे प्रेम भरा और सर्वश्रेष्ठ संबंध है. मुझ आत्मा का उस परमात्मा से संबंध. चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को देखें कि मैं कौन हूँ जो सारा दिन इन संबंधों को निभा रहा हूँ. मैं कौन हूँ जो सबसे मिलती, बोलती, सुनती है, सोचती, महसूस करती और अनुभव करती है. मैं वो शक्ति हूँ. इस प्रकृति के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूँ. प्रेम मेरी ओरिजिनल नेचर है. मैं आत्मा, ये सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को छोड़ अपने घर की तरफ चलता हूँ. देखें अपने आप को, वो सितारा चमकता हुआ इस सृष्टि को पार करते हुए जा रहा है. चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में पहुंच गया है, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है. मेरा घर, परम धाम, जो मुझ आत्मा का रहने का स्थान है, अपने पिता के पास निराकार परमपिता परमात्मा को देखे, जो भी उस घर का रहवासी है, और जिसे प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, वो भी मुझ आत्मा की तरह पॉइंट ऑफ लाइट है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्योरिटी, उस प्यार के सागर के समान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा के सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ और अपने मन में जो भी बात है वो मैं अपने पिता से कर सकती हूँ। शायद और किसी के पास समय ना हो मेरी बात सुनने का, लेकिन बाबा तो है, मैं उससे अपनी हर बात कर सकती हूँ। प्यार के सागर से प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पहुंच रही है, उस प्यार को अपने अंदर भरते हुए मैं आत्मा कितना भरपूर महसूस कर रही हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ, शिव बाबा मुझे बहुत बहुत प्यार करता है और यही प्यार अभी मुझे सब आत्माओं को देना है। मैं आत्मा धीरे धीरे उस परम धाम घर से वापस नीचे लौटते हुए अपने इस कॉस्ट्यूम में आ जाती हूँ और फिर ब्रिकुटी के बीच अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ विद द कॉन्शियसनेस कि आई एम अ लवफुल सोल। प्यार मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना स्वरूप है। ओम शांति,
ओम शांति। सुश्री शिवानी, आज इस पूरी बातचीत के लिए और मेडिटेशन के इस डीप एस्पेक्ट में हमें ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति,
ओम शांति। मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो हमारी इस अतृप्त आत्मा को, जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ प्यार से भरने की ज़रूरत है, वो प्यार जो हम अपने रिश्तों में तलाश रहे हैं, वो रिश्ता जो परम पिता परमात्मा के साथ है, वो हमें भर सकता है, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। इसी एस्पेक्ट के साथ अब आपसे इजाज़त लेते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।